एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की, मतलब जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है, मैरी कोंडो की द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप। सुनने में लगता है शायद घर चमकाने की कोई गाइड होगी, पर यह उससे कहीं ज्यादा है ना?
बिल्कुल, ये किताब सिर्फ चीज़ें करीने से लगाना नहीं सिखाती, बल्कि ये दावा करती है कि अगर हम अपने आसपास की चीज़ों को सही ढंग से व्यवस्थित कर लें तो हमारी सोच, हमारी आदतें, यहाँ तक कि पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। और आजकल की ज़िंदगी में जहाँ चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, जगह कम है और दिमाग में भी जैसे 100 चीज़ें चलती रहती हैं, तो ये विषय बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एक्चुअली सच में कभी कभी तो लगता है जैसे सामान ने हमें काबू में कर लिया है, बजाय इसके कि हम सामान के मालिक हों। तो फिर देर किस बात की, आइए मैरी कोंडो के इस तरीके, जिसे कोन मारी मेथड भी कहते हैं, इसकी तह तक चलते हैं। जरा देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या जादू है।
हाँ, तो सबसे पहले मैरी कोंडो है कौन, ये जानना दिलचस्प है। वो जापान की एक ऑर्गेनाइजिंग कंसल्टेंट हैं, व्यवस्थापन सलाहकार, लेकिन अब तो जैसे पूरी दुनिया उन्हें जानती है। उनकी किताब, नेटफ्लिक्स शो, एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गई है वो।
हाँ, और कमाल की बात यह कि उनकी महारत किसी डिग्री या कोर्स से नहीं आई, बल्कि उनके बचपन के जुनून से। मैंने पढ़ा है कि वो 5 साल की उम्र से ही घर सजाने वाली मैगजीन पढ़ती थी और अपने घर में तरह तरह के प्रयोग करती रहती थी। सोचिए, 5 साल की उम्र में।
सही कहा। और इसी जुनून और लगातार प्रयोग से उन्हें समझ आया कि सफाई के पुराने तरीके, जैसे रोज थोड़ा थोड़ा समेटना या कमरे के हिसाब से सफाई करना, वो अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं, मतलब क्यों चीजें फिर वैसी ही बिखरी मिलती हैं कुछ दिन में। उनका जो नजरिया है वो एक्चुअली जापानी संस्कृति से, शिंतो मान्यताओं से काफी प्रभावित है।
अच्छा, शिंतो मान्यताएं। हाँ, जहां वो मानते हैं कि चीजों में भी आत्मा होती है।
बिल्कुल, एक तरह की ऊर्जा या आत्मा, इसीलिए वो चीजों के प्रति आदर और धन्यवाद पर इतना जोर देती हैं।
ये बात वाकई सोचने वाली है। मैंने ये भी सुना कि सलाहकार बनने से पहले उन्होंने एक शिंतो मंदिर में सहायक के तौर में भी काम किया था।
हाँ, ये सही है।
शायद वहीं से चीजों के प्रति ये सम्मान वाला भाव और गहरा हुआ होगा।
हो सकता है, और उनकी विश्वसनीयता इसीलिए भी है क्योंकि उन्होंने हजारों लोगों के साथ काम किया है, अपने तरीकों को इतना रिफाइन किया है कि कहा जाता है उनके क्लाइंट दोबारा उस बिखराव का शिकार नहीं होते।
अच्छा,
तो ये किताब असल में उनके सालों के तजुर्बे का निचोड़ है, प्रैक्टिकल, परखा हुआ ज्ञान।
तो आखिर ये किताब है क्या? जैसा हमने शुरू में कहा, ये सिर्फ सफाई की टिप्स नहीं देती, ये तो एक तरह का घोषणा पत्र है जो हमें अपने सामान के साथ अपने रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है कि भाई, हम इतनी सारी चीजें क्यों जमा करते रहते हैं, इनका हमारी जिंदगी में क्या मकसद है।
हाँ, और इसका मुख्य लक्ष्य है पाठक को एक ही बार में एक बड़े व्यवस्थापन उत्सव के लिए तैयार करना, टाइडिंग फेस्टिवल। ये कोई रोज का छोटा मोटा काम नहीं है।
अच्छा, एक इवेंट की तरह।
हाँ, एक खास आयोजन जो कोंडो के मुताबिक घर और जिंदगी दोनों को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये उन सबके लिए है जो अपने घर के बिखराव से तंग आ चुके हैं, बार बार सफाई करके थक गए हैं, या जिन्हें लगता है कि उनके आसपास का माहौल उनकी मानसिक शांति छीन रहा है।
किताब हमें एक ऐसे सफर पर ले जाती है जो है तो बहुत प्रैक्टिकल, लेकिन साथ ही काफी गहरा, लगभग आध्यात्मिक सा लगता है। शुरुआत में ही ये सफाई से जुड़े कई मिथकों को तोड़ती है, जैसे ये मानना कि थोड़ा थोड़ा रोज समेटना चाहिए।
हाँ, या एक एक कमरा करके सफाई करनी चाहिए।
कोंडो कहती हैं कि ये सब बस ऊपरी लीपा पोती है,
इससे प्रॉब्लम की जड़ खत्म नहीं होती। इसके बजाय वो अपने तरीके के दो बुनियादी कदम बताती हैं। पहला, उन सभी चीजों से छुटकारा पाना जिनकी अब जरूरत नहीं है, मतलब डिस्कार्डिंग।
ओके।
और दूसरा, उसके बाद ही बची हुई चीजों के लिए सही जगह तय करना, स्टोरेज।
पहले हटाना, फिर सहेजना।
बिल्कुल, और ये पूरा काम कमरे के हिसाब से नहीं बल्कि चीजों की श्रेणी के हिसाब से होता है।
कैटेगरी वाइज।
हाँ,
अच्छा, जैसे सारे कपड़े एक साथ, फिर सारी किताबें एक साथ।
एग्जैक्टली।
और इस पूरी प्रक्रिया के दिल में है एक बहुत ही अनोखा सवाल, क्या ये चीज खुशी जगाती है, स्पार्क जॉय? किताब का मकसद यही दिखाना है कि जब हम सोच समझकर सिर्फ उन चीजों को अपने पास रखते हैं जो हमें सच में खुशी देती हैं, तो हमारा बाहरी माहौल तो सुधरता ही है, हमारा अंदरूनी संसार भी शांत और स्पष्ट होता जाता है।
हाँ, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, हम अतीत के बोझ से मुक्त होते हैं और भविष्य ज्यादा साफ नजर आने लगता है।
चलिए अब कोंडो के तरीके के मूल सिद्धांतों को थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहले वो इस आम धारणा को नकारती हैं कि कुछ लोग पैदाइशी व्यवस्थित होते हैं और कुछ बिखरे हुए।
हाँ, ये बहुत कॉमन है सोचना।
वो कहती हैं ये कोई टैलेंट नहीं बल्कि एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है। और वो बताती हैं कि पुराने तरीके जैसे रोज थोड़ा समेटना या कमरे के हिसाब से समेटना कारगर क्यों नहीं है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि एक ही तरह की चीजें, मान लीजिए कपड़े या किताबें,
वो पूरे घर में फैली होती हैं यहाँ वहाँ।
जब तक हम उन्हें एक जगह इकट्ठा नहीं करते हमें अंदाजा ही नहीं लगता कि हमारे पास कितना कुछ है।
ये एक अहम नुक्ता है और शायद सबसे जरूरी नियम ये है कि जब तक आप फालतू चीजें हटाने का काम, मतलब डिस्कार्डिंग, पूरा न कर लें, तब तक उन्हें सहेजने या स्टोरेज के बारे में सोचना भी नहीं है।
पहले सिर्फ हटाना।
ओके।
यहीं पर उनका वो मशहूर फिल्टर आता है, स्पार्क जॉय टेस्ट। हर चीज को अपने हाथ में लेना है, उसे महसूस करना है और अपने दिल से पूछना है, क्या इसे देखकर, छूकर मुझे खुशी महसूस होती है?
ये दिमाग का सवाल नहीं है कि ये बाद में काम आएगा या नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये सीधे दिल की आवाज है, एक अंदरूनी एहसास, एक शारीरिक प्रतिक्रिया जैसी। अगर जवाब हाँ है तो उसे रखें, अगर नहीं तो उस चीज को उसके दिए साथ के लिए मन में धन्यवाद कह के विदा कर दें।
मुझे ये बात दिलचस्प लगी कि जोर इस पर नहीं है कि क्या फेंकना है, बल्कि इस पर है कि क्या रखना है।
सही।
ये पूरी प्रक्रिया को थोड़ा सकारात्मक बना देता है ना। भविष्य की चिंता, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, वो इनसे निपटने के तरीके भी सुझाती हैं।
अच्छा,
फिर आता है श्रेणी के अनुसार चीजें छांटने का सिद्धांत, कैटेगरी वाइज, और इसका क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे कोंडो कहती है कि बदलना नहीं चाहिए।
ओके, क्या क्रम है वो?
1 कपड़े, 2 किताबें, 3 कागजात, 4 कोमोनो, यानी हर तरह की मिलीजुली चीजें।
कोमोनो मतलब जैसे किचन का सामान, स्टेशनरी।
हाँ, सब कुछ विविध वस्तुएं। और सबसे आखिर में 5 भावनात्मक चीजें, सेंटिमेंटल आइटम्स।
अच्छा,
ये क्रम इसलिए रखा गया है ताकि हम आसान चीजों से शुरुआत करके धीरे धीरे मुश्किल चीजों तक पहुंचे और इस दौरान खुशी पहचानने की अपनी क्षमता को बेहतर बनाते जाएं।
हाँ, ये क्रम वाकई सोच समझकर बनाया गया लगता है। तो कपड़ों से शुरू?
हाँ, क्योंकि इनसे हमारा भावनात्मक लगाव आमतौर पर थोड़ा कम होता है।
करना ये है कि घर के सारे कपड़े, अलमारी, दराज, बक्से सब जगह से निकालकर एक ही जगह जमीन पर ढेर लगा दें।
वो शॉक देना जरूरी है।
हाँ, कोंडो कहती हैं कि ये नज़ारा देखकर जो झटका लगता है वो जरूरी है ये समझने के लिए कि हमारे पास कितना कुछ है।
फिर एक एक कपड़े को छूकर पूछना है, स्पार्क्स जॉय।
फिर किताबें?
हाँ, सारी किताबें शेल्फ से उतार कर एक जगह रखें। यहाँ कोंडो हमें उन किताबों को रखने के मोह से लड़ने को कहती हैं जो हमने सालों से पढ़ी नहीं, बस ये सोच कर रखी हैं कि कभी तो पढ़ेंगे।
हाँ, ये तो बहुत लोगों के साथ होता है।
उनका तर्क है कि अगर अब तक नहीं पढ़ी तो शायद उसका सही समय बीत चुका है। सिर्फ वही रखें जो अभी आपके लिए मायने रखती हैं या जिन्हें देखकर आपको सच में खुशी होती है।
ठीक है, और फिर कागजात? ओह, ये तो मुश्किल काम है।
कागज, ये तो कई लोगों के लिए सिरदर्द होता है। यहाँ कोंडो का रवैया काफी सख्त है। उनका मूल मंत्र है, लगभग सब कुछ फेंक दें। सब कुछ?
सच में
सब कुछ?
लगभग।
वो सिर्फ 3 तरह के कागजात रखने की सलाह देती हैं। पहला, जो फिलहाल इस्तेमाल में है, दूसरा, जो सीमित समय के लिए जरूरी हैं, जैसे वारंटी, और तीसरा, जो हमेशा के लिए रखने जरूरी हैं, जैसे कानूनी दस्तावेज।
अच्छा, बाकी सब पुराने बैंक स्टेटमेंट, मैनुअल्स, कार्ड्स।
सबको अलविदा कहने की हिम्मत जुटानी होगी।
हिम्मत चाहिए इसके लिए। तो फिर आता है कोमोनो।
हाँ, ये सबसे बड़ी और शायद सबसे उलझी हुई श्रेणी है। इसमें रसोई के बर्तन, बाथरूम का सामान, स्टेशनरी, मेकअप, दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के तार, मतलब घर का बचा खुचा सारा सामान।
इसे कैसे करना है?
कोंडो सलाह देती हैं कि इसे छोटी छोटी उप श्रेणियों में बांट लें, जैसे पहले सारी स्टेशनरी, फिर सारा मेकअप, और फिर हर चीज पर स्पार्क जॉय टेस्ट करें। इसमें यकीनन काफी समय लग सकता है।
और आखिर में भावनात्मक चीजें?
हाँ, इन्हें सबसे अंत में छांटने की सलाह दी जाती है। कोंडो का मानना है कि तब तक हम स्पार्क जॉय पहचानने में माहिर हो चुके होते हैं और इन चीजों को ज्यादा वस्तुनिष्ठ होकर देख पाते हैं,
जैसे पुराने खत, तस्वीरें, बच्चों के बनाए चित्र।
हाँ, इन्हें भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि सोच समझकर रखना है, मकसद ये है कि हम अच्छी यादों को संजोएं पर अतीत के बोझ तले न दबें।
ठीक है, तो जब ये हटाने का मैराथन पूरा हो जाए तब
सिर्फ तभी चीजों को रखने यानी स्टोरेज की बारी आती है। कोंडो का स्टोरेज का फलसफा बहुत सीधा है, हर उस चीज के लिए जो आपने रखने का फैसला किया है एक पक्का घर तय करें।
हर चीज का अपना घर।
हाँ, उनका मानना है कि चीजें बाहर इसलिए बिखरी रहती हैं क्योंकि उनका कोई तय ठिकाना नहीं होता। जब हर चीज का अपना घर होगा तो इस्तेमाल के बाद उसे वापस वहीं रखना एक स्वाभाविक आदत बन जाएगी।
ये बात तो सही है। और वो वर्टिकल स्टोरेज यानी चीजों को खड़ा करके रखने की बड़ी हिमायती हैं, खासकर कपड़ों के लिए।
हाँ, उनकी वो मशहूर वर्टिकल फोल्डिंग तकनीक
जिससे कपड़े दराज में किताबों की तरह खड़े रहते हैं, हर कपड़ा साफ दिखता है
और एक निकालने के लिए बाकियों को छेड़ना नहीं पड़ता।
मैंने कोशिश की है, ये वाकई काम करता है।
बिल्कुल, यहाँ स्टोरेज का मकसद चीजों को आंखों से ओझल करना नहीं बल्कि उन्हें सम्मान देना और उनका इस्तेमाल आसान बनाना है। और आखिर में किताब ये समझाती है कि पूरी प्रक्रिया सिर्फ घर नहीं जिंदगी कैसे बदल सकती है।
मतलब
अपने घर को व्यवस्थित करना असल में अपने विचारों, अपनी प्राथमिकताओं और अपने अतीत को व्यवस्थित करना है। जब आप सिर्फ उन चीजों से घिरे होते हैं जो आपको पसंद है, जिन्हें आप प्यार करते हैं, तो आपको ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ आता है कि आपके लिए सच में क्या जरूरी है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और भविष्य की राह साफ होती है।
ये तो गहरा कनेक्शन है।
तो अगर हम इस पूरी प्रक्रिया के मुख्य संदेशों को समेटें तो कुछ बातें उभर कर आती हैं।
बताइए।
पहला, स्पार्क जॉय सिर्फ सामान छांटने का फिल्टर नहीं है, ये जीवन के दूसरे फैसलों के लिए भी एक गाइड बन सकता है।
जैसे
क्या ये नौकरी, ये रिश्ता, ये आदत मुझे सच में खुशी देती है? ये सवाल हमें ज्यादा प्रामाणिक जिंदगी जीने की ओर ले जा सकता है।
अच्छा, इंटरेस्टिंग।
दूसरा, चीजों के प्रति सम्मान और आभार। चीजों को फेंकने से पहले उन्हें धन्यवाद कहना, ये हमें चीजों को हल्के में लेने और इस्तेमाल करो और फेंको वाली संस्कृति से थोड़ा दूर ले जाता है। ये उपभोक्तावाद पर एक नया नजरिया देता है।
कृतज्ञता का भाव।
तीसरा, व्यवस्थापन एक बार का विशेष आयोजन है, कोई अंतहीन रोज का काम नहीं।
ये बहुत बड़ी बात है।
ये विचार ही अपने आप में काफी मुक्ति देने वाला है कि अगर एक बार ठीक से कर लिया तो शायद रोज रोज की चिक चिक से छुटकारा मिल जाए। ये अव्यवस्था के दुष्चक्र को तोड़ने का वादा है।
सही है।
और चौथा, बाहरी माहौल का हमारे मन पर सीधा असर। एक साफ सुथरा व्यवस्थित घर हमारे मन को भी शांत और केंद्रित रखने में मदद करता है। बिखराव सिर्फ बाहर नहीं होता, वो हमारे दिमाग में भी जगह घेरता है और तनाव पैदा करता है।
बिल्कुल, अगर हम इसे भारतीय संदर्भ में देखें तो हमारे यहाँ चीजों से भावनात्मक जुड़ाव काफी गहरा होता है।
हाँ, ये तो है।
क्या पता कब काम आ जाए वाली सोच भी बहुत आम है।
बिल्कुल, और तोहफों को सहेज कर रखना तो हमारी तहजीब का हिस्सा है।
तो शायद स्पार्क जॉय वाला विचार कुछ लोगों को थोड़ा अजीब या शायद अव्यवहारिक भी लगे।
खासकर जब सीमित साधन हो।
लेकिन ये सोचने पर तो मजबूर करता ही है कि क्या हम वाकई उन सारी चीजों को महत्व देते हैं जिनसे हमने अपने घर भर रखे हैं? और हमारे व्यस्त अक्सर छोटे भारतीय घरों में क्या वाकई एक व्यवस्थित जगह वो मानसिक शांति ला सकती है जिसका कोंडो दावा करती हैं?
ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर हर कोई अपने अनुभव से सोच सकता है।
बिल्कुल, इस किताब में कई ऐसी पंक्तियां हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं। कुछ खास कथनों पर गौर करते हैं।
हाँ, जरूर।
पहला, क्या रखना है और क्या फेंकना है, ये चुनने का सबसे अच्छा तरीका है हर चीज को हाथ में लेकर पूछना, क्या ये खुशी जगाती है? अगर हाँ तो रखें, नहीं तो हटा दें।
ये तो जैसे पूरे कोंडमारी मेथड का सार है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये फैसले का आधार तर्क या अपराध बोध से हटाकर सीधे हमारी अंदरूनी भावना, हमारे इंट्यूशन पर ले आता है, अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा करना सिखाता है।
दूसरा कथन, आप किस चीज के मालिक बनना चाहते हैं, ये सवाल असल में ये सवाल है कि आप अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। वाह, ये तो साधारण सी लगने वाली सफाई को जिंदगी के मकसद से जोड़ देता है।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारी चीजें सिर्फ बेजान वस्तुएं नहीं है, वो हमारे मूल्यों, हमारी पसंद और हमारी आकांक्षाओं का आईना है। हम जैसी जिंदगी चाहते हैं हमारा सामान भी उसी के अनुरूप होना चाहिए। ये चुनने का एक सक्रिय तरीका है।
बहुत खूब। और तीसरा, जब हम गहराई से देखते हैं कि हम किसी चीज को क्यों नहीं छोड़ पाते तो केवल दो कारण होते हैं, अतीत से लगाव या भविष्य का डर।
ये पंक्ति अव्यवस्था के पीछे के मनोविज्ञान को कितनी सरलता से पकड़ लेती है। ये हमें अपनी हिचकिचाहट की जड़ तक ले जाती है
कि हम गुजरे हुए कल की यादों में अटके हैं या आने वाले कल की अनिश्चितताओं से डरे हुए हैं।
हाँ, जब हम ये समझ जाते हैं तो उन चीजों से मुक्त होना आसान हो जाता है जो अब हमारी जिंदगी में कोई सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रही।
सही कहा।
और दिलचस्प बात यह है कि इस तरीके के सिद्धांत सिर्फ घर की अलमारियों और दराजों तक ही सीमित नहीं है, इनके असर जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर भी पड़ सकते हैं।
जैसे कि?
जैसे बेहतर फैसले लेने की क्षमता। जब हम लगातार अभ्यास करते हैं कि कौन सी चीज खुशी जगाती है, तो हमारी ये पहचानने की सहज क्षमता तेज होती जाती है। हम इसे दूसरी जगहों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
नौकरी, रिश्ते?
हाँ, कोई नई नौकरी चुनते समय, कोई नया रिश्ता शुरू करते हुए या अपनी व्यस्त दिनचर्या में ये तय करते हुए कि कौन सी गतिविधि सच में जरूरी है। फिर सोच समझ कर खरीदारी। जब हम सिर्फ वही रखते हैं जो हमें पसंद है, तो हम नई चीजें खरीदते वक्त भी ज्यादा सावधान हो जाते हैं। हम बिना सोचे समझे खरीदारी कम करते हैं, जिससे न सिर्फ घर में फालतू सामान कम होता है बल्कि पैसे भी बचते हैं।
सजग उपभोक्तावाद, माइंडफुल कंजम्पशन।
हाँ, और मानसिक सुकून तो है ही। एक साफ सुथरा व्यवस्थित माहौल मन को शांत रखता है, बिखराव से होने वाला तनाव और चिड़चिड़ाहट कम होती है,
फोकस करना आसान होता है।
बिल्कुल, और भावनात्मक हल्कापन भी। अतीत से जुड़ी उन चीजों को जाने देना जिन्हें देखकर अब खुशी नहीं मिलती, एक तरह से भावनात्मक बोझ कम करने जैसा है। ये हमें अतीत को सम्मान के साथ विदा करके वर्तमान में पूरी तरह जीने में मदद करता है।
ये बिल्कुल सही बात है। और जरा सोचिए, अगर यही स्पार्क जॉय वाला सवाल हम अपने डिजिटल जीवन पर लागू करें तो।
ओह हाँ, ये तो बहुत जरूरी है आजकल।
हमारे फोन और कंप्यूटर में पड़ी अनगिनत फाइलें, सैकड़ों ईमेल्स, दर्जनों ऐप्स जिनका हम कभी इस्तेमाल नहीं करते, और उन वेबसाइट्स या सोशल मीडिया फीड्स का क्या जो खुशी देने के बजाय अक्सर हमारी ऊर्जा चूस लेते हैं या हमें बेचैन कर देते हैं।
सही कहा। क्या उन पर भी ये फिल्टर लगाया जा सकता है? ये सोचने लायक बात है।
बिल्कुल। इस सारी बातचीत से अगर मुझसे पूछें कि मेरे लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही, तो वो ये है कि घर को व्यवस्थित करना जिंदगी भर चलने वाला एक उबाऊ और कभी ना खत्म होने वाला काम होने के बजाय एक बार का बड़ा निर्णायक त्योहार जैसा हो सकता है। ये सोच ही कितनी राहत देती है कि अगर एक बार हिम्मत करके इसे ढंग से कर लिया तो शायद रोज की सिरदर्दी हमेशा के लिए खत्म हो जाए।
ये वाकई एक पावरफुल आइडिया है। और मेरे लिए सबसे प्रभावशाली विचार ये है कि हमारा बाहरी माहौल हमारी अंदरूनी हालत का आईना है, और ये रिश्ता दो तरफा है। हम सचेत रूप से अपने आसपास की चीजों को बदलकर अपने मन की स्थिति को भी बेहतर बना सकते हैं।
सही।
स्पार्क जॉय का छोटा सा सवाल असल में एक शक्तिशाली औजार है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी में क्या चीजें सच में मायने रखती हैं।
जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। भौतिक चीजों से हटकर सोचें तो हमारी जिंदगी के किन और हिस्सों में, जैसे हमारे शेड्यूल में, हमारी आदतों में, हमारे रिश्तों में या हमारे विचारों में, ऐसी अव्यवस्था हो सकती है जिसे स्पार्क जॉय के सिद्धांत से परखा जा सकता है?
ये गहरा सवाल है। क्या हम अपना कीमती समय और ऊर्जा उन चीजों पर लगा रहे हैं जो हमें सच में खुशी और संतोष देती हैं? ग्लीमिल अंगे अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकर्थ फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।